जून 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ।
वहाँ हैरानगी की बात ये थी कि आप अंदाज़ा करें कोल्ड का, कि मैंने गर्मियों में गर्मी की वजह से तो एग्जॉशन देखी थी, सर्दियों में ये नहीं देखा था।
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी।
इशारा है कोरा करो मैं, उसके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये हमारे शुमाली इलाका जार से गुजरती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे दिल से गुजरती है।
तो वो कहने लगे जी कि अल्लाह ताला ने ये जो फौज भेज दी और जो चाइनीज आ गए, ये हमारे लिए नेमत है, हमारी तो नस्लें बदली हैं।
ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया, समझ गए।
8,000 feet अबव सी लेवल दिस फोर्स विल फिनिश वेयर वी आर, वी विल ऑल फ्रीज।
कराकोरम हाईवे को अनऑफिशियली दुनिया का आठवां अजूबा कहते हैं। 1960 और 70 की दिहाई में बनाए जाने वाली यह शाहराह हमारी कौम, पाक फौज और कोर ऑफ इंजीनियर्स के बहादुर सपूतों की हिम्मत, हौसला, महारत, जुस्तजू और अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप देखेंगे, इसमें हमारा मकसद ये है कि हम अपने लोगों को बता सकें कि शाहराह कराकोरम कैसे बनाई गई, इसको बनाने में क्या तकलीफें पेश आईं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या वो चैलेंजेस थे जिनसे नबर्द आजमा होकर इस अजूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया गया। इस फिल्म के तवस्सुत से हम अपनी कौम, पाक फौज इंजीनियर्स और खुसूसन FW के जर्री जवानों और अफसरान को सलाम पेश करना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शर्मिंदा ताबीर किया। हमारा सलूट है उन शहीदों को जिन्होंने शाहराह कराकोरम की तामीर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया।
मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ खालिद है, मैं PMA 36 PMA मेरा कोर्स है। 8 इंजीनियरिंग से मैं इन्फेंट्री स्कूल गया, इन्फेंट्री स्कूल से मैं फिर प्लस टू वॉकी के एच में।
मेरा नाम साजिद बशीर शेख है। 1970-71 में मैं कैप्टन था और 108 इंजीनियर बटालियन में कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था। ऑफिशिएटिंग कमांड जो मिली मुझे कंपनी की, वो मैं पहला कैप्टन था इस बटालियन में जिसको ऑफिशिएटिंग कमांड मिली, और ड्यूरिंग द KKH टेन्योर और किसी को ये कमांड एज ए कैप्टन नहीं मिली।
मेरा नाम सबीउद्दीन बुखारी है और ये जो इंटरव्यू है उस पीरियड का है जब मैं कैप्टन था, अक्टूबर 1970 से अक्टूबर 1971 तक, जबकि मैं कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था।
ये कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहलाता है। दिस इज द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं और एक कारपेटेड हाईवे जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये जो खुंजराब पास है जहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का, वो 16,500 फुट के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें वहाँ तक ये मेटल रोड बनी है, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए मशीनरी कैसे ऊपर जाती होगी और कैसी होगी। मैं इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये अजूबा है। जिस टेरेन में ये बना हुआ है, आप ये देखिए कि उसमें ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं, उसमें गॉर्जेज आते हैं, उसमें टनल्स बनी हुई हैं रॉक के अंदर, और जो बंदा हैरान होता है कि ये टनल्स कैसे बने।
फिर 1965 में जिस वक्त अमेरिकन ने पाकिस्तान को अबंडन कर दिया और एम्बार्गो लगा दिया हमारे ऊपर, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि चाइना ने हमारी हेल्प की। डिफेंस का सामान काफ़ी सारा जो है वो चाइना से आया, लेकिन चूंकि हमारा कोई रोड लिंक नहीं था तो सारे का सारा सामान जो है एयरलिफ्ट होकर आता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर फौज को डिस्ट्रीब्यूट होता था। जिस वक्त जंग ख़त्म हुई तो जनरल बहादुर शेर थे एक, उनकी सरबाई में एक डेलीगेशन गया चाइना गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने जिस वक्त इनका शुक्रिया अदा किया तो चुआ लाई ने कहा कि अगर हमारे दरमियान एक सड़क होती तो क्या हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आपको सपोर्ट कर सकते थे।
शाराय कोराकरम का जो प्लान हुआ तो बताया जाता है कि इन्होंने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को, बड़े इंजीनियर्स को भी एडवाइजरशिप के लिए बुलाया कि आप आके देखें कि इस टेरेन में इस नौयत की जो रोड है वो बन सकती है। तो एक जर्मन इंजीनियर ने एक फिक्रा कहा था, उसने सारी दुनिया में रोड्स बनाई थी, उसने जब उसका टेरेन देखा, उसकी डिफ़िकल्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट लेट द पाकिस्तानीज डू इट। ये उन्होंने तंजिया कहा था, मीनिंग देयर बाई कि ये रोड बनने वाली नहीं है।
ये मैसेज फिर कन्वे किया गया जैसे फील्ड मार्शल यूप को, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेंट क्या थी, काम फौरी तौर पे शुरू किया जाए, फौरी तौर पे शुरू किया जाए, ना एस्टीमेट बना, ना पीसी वन बना, ना सर्वे हुआ, ना कोई और चीज़ हुई, तो इसलिए ये टास्क जो है ये आर्मी को दिया गया ताकि वो फौरी तौर पे इसको शुरू कर सके।
दिस टास्क कुड बी असाइन टू एनी अदर एंटिटी। उसकी वजह ये है कि फौज ही एक ऐसा अदारा था जो इन सब मुश्किलात से गुजर सकता था।
तो अगर ये सड़क को बना सकता था तो आर्मी बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता।
वो एरिया ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं कि कोई सिविलियन का कोई कंट्रैक्टर या कोई कंपनी को काम नहीं कर सकती थी उस इलाके में। पहुंचना, रहना, उन लोगों को खाना देना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो उस वक्त फिर यू नीडेड टू अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी कुड डू इट एक्सेप्ट फॉर आर्मी एंड आर्मी इंजीनियर्स।
ठीक है, इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सेटल एरिया जो है वो आपका एपटाबाद से लेके तो ये जो अपना बटग्राम तक का एरिया जो है इसको हम सेटल एरिया में गिनते हैं, ठीक है। और बटग्राम से लेके थोर एक जगह है चलास के पास, ये एरिया जो है ये यागिस्तान कहलाता था,
تیسرا علاقہ جو ہے وہ تھور سے لے کے گلگت تک ایجنسی کا علاقہ تھا, ایک آ جاتا ہے ہنجراب کا علاقہ.
کے کے ایچ منصوبے کی ذمہ داری دراصل ایف ڈبلیو کے 491 اور 492 گروپوں کو سونپی گئی تھی. منصوبہ یہ تھا کہ 492 گروپ بے شام سے گلگت تک سڑک بنائے گا, جبکہ 491 گروپ نے گلگت سے حنجراب تک دونوں اطراف سے یہ کام کرنا شروع کیا.
تو ایک سب سے پہلے June 1966 میں دو بٹالین ہماری ریز ہوئی, 1 NGO بٹالین اور 151 منیر بٹالین. چکلالا سے ایئر لفٹ ہوئی خوتن, یہ چائنا کا علاقہ ہے خوتن, وہاں پہ خوتن سے حنجراب تک سڑک ہوئی. میں اس وقت کپتان تھا جیلر میں, تو آئی واز آلسو دا فرسٹ ون ٹو بی پوسٹڈ ٹو 491 روڈ کنسٹرکشن گروپ ایز اے GSO3 ورکس. ہم پہلی فوج تھی یا انجینئرس کے ٹروپ تھے جو کہ گلگت میں, انفیکٹ آرمی کے پہلے ٹروپس تھے کہ جو کہ گلگت میں لینڈ کیے.
میرا نام کرنل تنویر احمد ہے, میں 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین میں تھا, پوسٹڈ تھا. میری بٹالین 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین کیونکہ گلگت سے آگے خنجاب کی طرف کام کر رہی تھی, اور کراکرم ہائی وے جو بننی تھی وہ ہمزہ ریور کے لیفٹ بینک پہ بننی تھی, اور لیفٹ بینک پر کوئی جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی. تو ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ ہم گرمی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ہم پار جا سکیں, کیونکہ ہم نے کام پار کرنا تھا. تو اس لیے پھر ہم نے وہاں ایک ایریل روپ وے بنایا, اور ہماری ساری لوجسٹکس اس ایریل روپ وے کے تھرو پرلی سائڈ پہ جایا کرتی تھی.
ایٹ دی ٹائم آف مائی پوسٹنگ ٹو کے کے ایچ آئی واز اے لیفٹیننٹ. تو اس وقت جو کے کے ایچ میں ذمہ داری تھی, اس سے پہلے آئی وی آر کی تھی جو کہ آرمی انجینئرز سر انجام دے رہے تھے. تو کے کے ایچ کی جو بگننگ ہوئی ہے دیٹ واز ایٹ دی اینڈ آف آئی وی آر پروجیکٹ ڈیزیگنیشن.
اس کے لیے پہلا سٹیپ جو تھا وہ آفیشیٹنگ سی او نے جو لیا, میجر مختار نے, وہ تھا کہ انہوں نے دربار ہولڈ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سڑک جو بن رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ سالوں میں فائدہ مند خالی نہیں ہوگی, بلکہ ہماری جو آگے نسلیں آئیں گی ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یہ تھا پہلا سٹیپ جو کہ اس یونٹ میں لیا گیا تھا, اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ کافی جوش جذبے کے ساتھ کے کے ایچ موو ہوئے تھے.
اب وہ فورس تو پہنچ گئی تھی لیکن ان کے لیے اکوپمنٹ نہیں تھا کوئی بھی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ چلاس ایئر فیلڈ کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ اس کے اوپر جہاز اتر سکے. تو پھر امریکنس کو کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں. تو امریکہ کی ایک ٹیم آئی جو کہ فرانس سے انہوں نے اپنے جہاز لے کے آئے C-130. ان C-130 سے مشینری جو ہے وہ ڈراپ کی گئی چلاس, ٹھیک ہے, جس میں گریڈر, جس میں ڈوزر, جس میں رولرس جو تھے یہ ڈراپ کیے گئے وہاں پہ. اس سے پھر جو رن وے کو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا. اس کو رن وے کو اسٹرینتھن کر کے پھر چارٹرڈ PIA فلائٹ سے سامان جاتا تھا اور وہ چلاس اترتا تھا, پھر وہاں سے استعمال ہوتا.
اتنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ تو لازماً ہے کہ پرابلمس تو ضرور ہوں گے, لوجسٹکس کے, ایڈمنسٹریشن کے پرابلمس, لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, مٹیریلس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا.
وی اونلی ہیڈ دو تھری تھنگ دیٹ وچ آئی ہیو مینشن, کہ آپ کے پاس چیزر تھے, ہیمر تھے, کرو بار تھا, اور اسی سے ہم راک فیس کو کریک کرتے تھے, کرو بار سے بولڈر نکالتے تھے, اور بڑے لاگس سے اس کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیتے تھے.
हमने जब ये रोड बनानी शुरू की हमारे पास कोई कूपन नहीं था, कोई मशीनरी थी, हमने ये सड़क गेंती बेलचों से शुरू की थी और गेंती बेलचों से हमने इसके पायलट कट किया। माइंड यू पायलट कट जो था, इनिशियल जो फर्स्ट कट होता है उसको पायलट कट बोलते हैं, वो पायलट कट जो था इसका शायद 14 फुट था। हमने 14 फुट की रोड गेंती बेलचों से बनाई।
जब शीशगढ़ पे सैलाब आया तो वो वहाँ पे बंद बन गया और सड़क बंद हो गई, तो उस वक्त रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे एक बिजली सस्पेंशन ब्रिज और लॉन्च किया जाए। जब वो लॉन्च किया गया तो उन्होंने कहा कि जी वो गिलगित वाला ब्रिज जो है वो किसने बनाया था, उन्होंने कहा जी वो अरबी खान ने बनाया था।
मेरा नाम मोहम्मद अरबी खान है। 70 में मैं पहला पोस्टिंग मेरी गिलगित हुई थी KKHWA पर 104 इंजीनियर बटालियन में।
वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस कंपनी को टास्क दिया कि इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज लगाना है फॉर दी हैवी व्हीकल्स ताकि हुंजा रिवर क्रॉस करने के लिए, तो आप जगह सेलेक्ट करनी थी कि किस जगह पर ये बनाया जाए। जो सस्पेंशन ब्रिज है उसका मैक्सिमम आप जो स्पैन के गुंजाइश थी वो 2 इंच होती है मेजरमेंट में, क्योंकि अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली नहीं है तो जब आप उसको लॉन्च करते हैं होती है तो उसमें सिर्फ 2 इंच की गुंजाइश होती है। दैट वाज डिफिकल्ट पॉइंट हाउ टू गेट इट, मेरा मतलब है आपने 400 फुट का दरिया के अक्रॉस नापना है तो किस तरह नापा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब कह देती है ना बनाओ तो हम फिर ये कहते हैं बनाओ भेज दो बंदे। अगर आपको पता नहीं आपका इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ है जनरल जावेद नासर का, नहीं हुआ भी आपने किया होगा, उसको ड्रॉप किया जनरल जावेद नासर जो ENC में रहे हैं और MDOPA में रहे हैं, उनको चाइना के बॉर्डर पर ड्रॉप उधर किया गया।
जनरल जावेद नासर वॉज पार्ट ऑफ 101 इंजीनियर बटालियन और मेरे हिसाब से 101 इंजीनियर बटालियन बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते रहे।
तो जनरल जावेद नासर का वो एसोसिएशन बहुत पुराने हैं 101 इंजीनियर बटालियन को रेज करके, तो वो लोग वहाँ गए थे। तो द अदर एंड ऑफ द रोड दैट इज़ फ्रॉम पंजाब डाउन स्ट्रीम्स, ये उसके हालात जो हैं वो जनरल साहब बहुत अच्छी तरह से आपको, एंड दे वर रियली रियली वेरी डिफिकल्ट डे।
इन जून 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ। अगले दिन सारे पर्टिकुलर से गवर्नमेंट लेटर जो है वो आ गया, यू विल बी द अकाउंट्स फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप विच इज़ गोइंग टू चाइना। अभी तक ये नहीं बताया था कि सड़क बनाने के लिए जो है ना एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स का हमने जो आदमी सिलेक्ट किए हैं उसके तुम इंचार्ज हो। तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये सड़क बननी कहाँ पे आती है, उन्होंने कहा कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर से शुरू करनी है हमने और फिर इसको गिलगित लेके आना है, कि अगर चाइना के बॉर्डर से ऊपर हमने इधर आना है तो वो तो 10,000 से भी ऊपर होगा। वो जगह का नाम बताएं ताकि मैं नक्शे में से देख सकूँ जो उसका आल्टीट्यूड क्या है। तो मुस्करा के उन्होंने कहा कि अभी तुम जाके मैप को देखोगे तो खुंजराब ढूंढना चाइना के बॉर्डर का। तो बड़ी मुश्किल से अगले दिन जो है वो खुंजराब को ढूंढा तो उसका आल्टीट्यूड जो था नक्शे में दिया हुआ था 16,500।
तो ये लोग जो गए थे प्लेन तो पंजाब से उठ के वहाँ पे उनको एकदम डाल दिया गया था। वहाँ पे कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुई थी, कोई किसी को वहाँ पे उनकी वो तरबियत नहीं हुई थी, कोई किसी को बताया नहीं गया था कि ये होगा। दे वर जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम दिस प्लेस एंड प्लेस देयर टू कंस्ट्रक्ट द रोड।
Nobody had the foggiest idea कि खुंजराब कैसा है, किस जगह पे है, उससे साथ आबादी किनकी है। तो मैंने कहा कि जी उधर 150 आदमियों को आप जो है इतनी आल्टीट्यूड पे भेज रहे हैं तो वो तो सारे के सारे लेट जाएंगे एंड देयर इज नो डॉक्टर इन द एडवांस पार्टी।
नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए जिस वक्त खुंजरा फोर्स को वहाँ पे लॉन्च किया गया है उस वक्त तक आपका आपकी ना गवर्नमेंट सेंक्शन आई थी फॉर रेजिंग ऑफ यूनिट्स, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन थी, ना यूनिटें खड़ी हुई थी। सिर्फ सोचा गया था कि ये यूनिटें बनाई जाएंगी। पीपल वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर, दे वर प्लेस्ड एट सारपुर फ्रॉम टाइम, पुट इनटू द एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू चाइना।
खुदा तुम उधर से शुरू करो, वो भाई खुदा के बंदे हैं, आप लॉजिस्टिक उनको कैसे देंगे? इधर चलो अपन है क्योंकि PWD ट्रैक था वहाँ पे।
आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो कि मैंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने कहा जी 150 C-130 में जाएंगे कैसे? उन्होंने सारी की सारी सीटें सब कुछ जहाज के अंदर से जो है ना रिमूव कर दिया हुआ था। और अभी हमने ट्रुप्स जहाज में बिठाने नहीं शुरू किए, मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी द अरेंजमेंट्स आपने जो बनाई हैं। तो वहाँ पे 4 रस्सियाँ, मोटी रस्सी, वो जहाज़ के अंदर टेल से लेके आगे तक कॉकपिट तक जो है ना, उन्होंने 4 रस्सियाँ जो थी ना वो उस तरह बैठा पका के आपके आदमी जो हैं यहाँ पे आके एक एक जो है वो 40-40 की बैठेंगे। आज तक मैंने इस तरह C-130 के अंदर लोगों को जाते नहीं देखा। हम जा रहे हैं चाइना के अंदर।
जो खुंजरा का इलाका है वहाँ पे 2 प्रॉब्लम थी, एक तो वेदर का प्रॉब्लम था, एक्सट्रीम कोल्ड,
द वेदर वाज वेरी वेरी कोल्ड, इतना कोल्ड कि आप लोग यहाँ बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते,
और दूसरा हाइट।
हैविंग नो कम्युनिकेशंस विद पाकिस्तान, हम सबको ये प्रॉब्लम था कि हम अब करें क्या, क्योंकि सितंबर के एंड के बाद जो है सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी, अक्टूबर जिस वक्त शुरू हुआ तो हमारे 5-6 आदमियों के हाथ काटने पड़े। तो पत्थरों की टेम्परेचर जो है, जो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर थी उससे भी तकरीबन थोड़ी सी नीचे ही होती थी, तो वो जो पत्थर जो है ना वो चिमट जाते थे हाथ को। तो ये सबसे जो डेंजरस चीज़ हुई थी वो हमारे साथ ये हुई थी दैट इफ़ यू डोंट ब्रिंग दिस फोर्स टू लोअर ऑल्टीट्यूड, दिस फोर्स विल फिनिश वेयर वी आर, वी विल ऑल फ्रीज।
और इतनी हाइट पे ऑक्सीजन नहीं है, हर 2-3 कदम के बाद थोड़ा रुक के 2-4 सांस लेने पड़ते हैं, ये हालत होती है उधर। और बंदा ये गिलास फिर नज़र आ रहा है, गिलास है, बंदा यही पता लगता है कोई नुक्ता है हाइट से, बर्फ में यही पता लगता है कोई नुक्ता है किसी चीज़ का।
बेशुमार स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म, रेन, और रोड ब्लॉक ही रोड ब्लॉक थे,
और हवा के भगोले चल रहे थे, रेत उड़ती थी।
आप पानी फेंकें सड़क, कच्ची सड़क के ऊपर जम जा रहा था, कोई कतरे अगर किसी पानी के आपके गिर जाए बदन में जब जा रहे हैं तो फ्रीज हो जाना।
अब वहाँ पे यकीन नहीं आएगा किसी को, सारी की सारी फोर्स जो थी ना वो लेट गई, उसमें हाइट इफेक्ट जो हुआ उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। सबसे बुरी हालत डॉक्टर की थी, डॉक्टर जो था वो, मैंने कहा कोई इसकी दवाइयाँ होती हैं? मैंने कहा कोई हाई आल्टीट्यूड की दवाई नहीं होती।
आपके नज़दीक ये सुस्त मुस्त एरिया में फंस गए, उनको कोई मुश्किल हुई तो उन्होंने एक सिग्नल दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये आर्डर दो कि जी प्लीज़ एक इमीडिएट एक्शन लें। तो इधर से जवाब गया सिग्नल का कि जी प्लीज़ जस्टिफाई व्हाट What do you mean? आपका क्या मतलब है? तो आगे से हॉस्पिटल ने जवाब दिया,
हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन
खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक।
बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम में।
हुंदा के लोग हैं स्पेशली फ्रॉम गिलगित ऑनवर्ड, पीपल वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। नेचुरली चूँकि हुंदा के मीर के साथ सरकार अच्छे थे, इसलिए लोगों के साथ भी तलकात उस हिसाब से अच्छे थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड।
मेरा इलाका तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था, ये तो था इंडस कोहिस्तान में, ये जो बिशाम से चिलास तक का इलाका है। तो इंडस कोहिस्तान ऐसे लोग रह रहे थे जब IVR बन रहा था, इंडस वैली रोड, कि जैसे वो स्टोन एज में होते। वो रोटी जो है, ये जब हम कराकुरम हाईवे बनाने गए तब की भी बात कर रहा हूँ, कि रोटी जो है वो पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर बनाते थे। तो पहले तो वो स्केर्ड थे कि ये तो मामला वो है कि जैसे आपने अभी कहा कि जी ये शायद टेक ओवर ही कर लेंगे या क्या होगा, लेकिन जब उनको ये फ़ायदे नज़र आने शुरू हुए, हमारी लेबर फोर्स में भर्ती हुए, उनको पैसे मिलने शुरू हुए, वो अपना लिबास खरीद सकते थे, अच्छा खाना मुहैया, हमें देखा उन्होंने कि ये कैसे खाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, तो वो जो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हुई उनको, उनमें लाइफ चेंज आ गया।
मसलन राशंस में हमें मीट एंड हूफ जो था वो था, बकरे हमें देते थे, तो जो उनके विलेज हेडमैन थे या नंबरदार जो अच्छे करते रहते लोग थे, वो फिर हमारे ये सप्लाई कंट्रैक्टर हो गए, और उनकी लाइफ जो थी वो नोमैडिक लाइफ से फिर सेटल्ड लाइफ की तरफ आने शुरू हुई।
और जैसे जैसे हम देखते थे कि उनके जो हालत दुरुस्त हो रही है, इम्प्रूव हो रहे हैं, उनके वो सेहतमंद हो रहे हैं लोग, कुछ उनके चाल ढाल बेहतर हो गई है, कोई उनका मुंह पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई है, तो ये हमारी मोटिवेशन थी।
पहला ट्रक जब जुगरोट में पहुंचा तो हमारे बड़ों ने क्या किया, ये क्या खाती है, हाँ ये घास चारा खाती है, तो एक ने पत्ता क्या ये पत्तों का बड़ा एक गठल आकर उनके सामने रखा, ये खाती।
तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक संतरी खड़ा हुआ था, तो आखिरी गाड़ी थी, उसने देखा उसके अंदर एक बाबा बैठा हुआ है, बारिश आदमी है, बड़ा रोबदार, बड़ा अच्छा। तो उसने कहा, वो संतरी था, पाजी था, फौजी नहीं था, उसको बाबा जी ये झंडा लो और अपना हाथ बाहर रखना, और उसे अगले पास जाके ना उस संतरी में झंडा बढ़ा देना। तो बाबा जी ने झंडा ले लिया, वो झंडा ले लिया और उसको लेके चल पड़े। बाद में पता चला वो बाबा जी थे, वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, सरदार अब्दुल कयूम।
वो जो मैंने आपको बताया पहले कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक हम किया करते थे दरबार के बाद, उसमें फिर वो स्किट्स वगैरह पेश करते थे जो जवान होते थे, तो व्हाट आई सा कि वो कह रहा है उसको, ओए कमांडर आ गया है, वो थोड़ा आ रहा है, सीधे हो जाओ। तो मेरा नाम मेरे कोर्समेट्स ने राइट फ्रॉम PM में हथौड़ा डाला हुआ था।
तो खुंजराब से थोड़ा सा पहले, टॉप से पहले, कहते हैं वो एक कंप्लीट हर्ड ऑफ कम अज कम 40-50 मार्को पड़ोसी वो सामने नजर आया जा रहा है ऊपर, और दूरबीन से नेकेड आई से नोटिस नहीं बता करता है ना, क्योंकि बर्फ है और ये होता है। तो मैंने वो बोल देखा, मैंने कहा यार ये 40-50, मैं बड़ा अपने आप को फने खान समझ के मैंने कहा मैं आगे से ऊपर चढ़ता हूँ और आगे से होके इनको पकड़ते हैं। When I started with देयर राइफल, मेरे ख्याल में कोई 50 गज गया होगा, मेरा सांस फूट गया। एंड आई हियर दैट वो किधर तो मैं किधर, भाई मेरा यहाँ से आदमी मेरे ख्याल में क्लाइम किया होगा मेरे को 50-60 गज। लिटरली आई वॉज ब्रेथलेस।
हर जगह हर वक्त ऑफिसर जो हैं वो सड़क के ऊपर होते थे। जब सड़क के ऊपर जब जवान देखता है कि मेरा अफसर मेरे साथ है तो फिर वो पीछे नहीं हटता।
मैंने जो ज़िंदगी में सीखा वो यही था कि आप वेलफेयर करें, और फौज ने ये सिखाया जब मैं जूनियर ऑफिसर था कि वेलफेयर करेंगे तो जवान आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होगा, वेलफेयर नहीं होगा तो वो पीछे कहीं होगा। तो मैं अपना लंच वापस आके अपने हेडक्वार्टर में नहीं करता था, जहाँ टाइम हुआ उसी प्लटून में उन्हीं का जो खाना आता था दाल रोटी वही बैठ के, तो मैं वही पत्थरों पे स्टोन्स पे बोल्डर्स पे वहीं चाय पीनी उनके से। तो एक दे यूज़ टू फील कि मैं उनमें से एक हूँ।
यू हैड टू देन गो आउट ऑफ द वे सीनियर पीपल यानी सरदार जैसे मेरे से सरदार साहबान ऑफिसर साहबान कि आप आउट ऑफ द वे जाके अपने जवानों के साथ मिल जुल के काम काम तो कराना है, लेकिन जब काम नहीं हो रहा तो उनके साथ गपशप लगा ली, उनको पूछ लिया हाल, हालांकि आपको पता होता है कि तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ को शेयर करना उसका हिस्सा बन जाना।
और वहाँ पे एक जो रिश्ता था ना वो अदब का रिश्ता था, वो लोगों को पता था कि ये हमारा ऑफिसर है, इसके साथ हमने किस तरह बिहेव करना है क्या करना है। मजाक भी चलता था, गपशप भी चलती थी, डांट डपट भी होती थी, लेकिन उसको लोग उस तरीके से नहीं लेते थे जो कि जिससे वो हर्ट हो। तो इस तरीके से हम एक बहुत अच्छी टीम के तौर पे वहाँ पे उभरते थे और काम करते थे।
सबसे बड़ी चेंज जो थी पाकिस्तानियों में जो आई, आपको पता है चाइनीज जो है ना दे डोंट वेयर एनी रैंक्स, तो हमें भी उन्होंने कहा कि जैसे रैंक्स वैंक्स तो हमारी यूनिफॉर्मों पे कोई नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि ये वर्दियाँ हम जो है ना चाइना जो हमें दे रहा है हम वो पहनेंगे, नीले रंग की वो जैकेटें और नीले रंग के आगे जो आजकल भी हैं, और वो जो था वो सही बिल्कुल चला, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दिन रात तो आप इकट्ठे रहते थे, दिन रात आप इकट्ठे रहते थे उधर, तो वो तो प्रॉब्लम ही उधर कोई नहीं हुआ था हमें।
एक तो ये होता है कि आप अपना काम करें जो आपके ज़िम्मे है, लेकिन एक वो होता है कि बियॉन्ड ड्यूटी, जो ड्यूटी आपसे रिक्वायर नहीं कर रही आप वो काम करें, और उसमें खदशात भी होते हैं और जान जाने का ख़तरा भी होता है। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने दे वेंट बियॉन्ड देयर ड्यूटी।
एक सैपर की शहादत हर किलोमीटर पे हुई है। मेरा ख़्याल है ये आप बहुत कम बता रहे हैं। उन तमाम लोगों की शहादतें इसमें शामिल होनी चाहिए जो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे। मसलन ये हमारे सैपर्स के साथ वहाँ के जो लोकल्स लेबरर्स काम करते थे,
ऊपर अल्लाह ताला नीचे मौत दरिया, समझ गए। अगर स्लाइड आ गई तब भी ख़त्म, अगर कोई और कोई मसला बारिश पानी आ गया तब भी ख़त्म। यानी दो तरीके थे बचने के, एक दुआ से और एक तौबा से, बाकी उधर बचा नहीं है कोई।
उधर से गड़ 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 की आवाज़ आई एंड आई सॉ ब्लैक स्मोक, और ये तीन बंदे रास्ते बीच में है। ये वो था जो बंदा पत्थर पर खड़ा था, मैंने कहा आपको हमने देखा ना, वो इतनी ऊंची थी, बड़ा बोल्डर था, हाइट ऑफ अबाउट दिस रूम, वो उस ऊपर खड़ा हो गया कि साइडों से निकल जाएगी। तो आई सॉ इट माई सेल्फ कि जब वो आई है लेयर पर पीछे वाली, इट वॉज अबव हिज हाइट एंड आई सॉ हिम, उसको जब लगी ना तो गिरते हुए।
लेकिन उसकी वजह ये हुई जब हमने पहाड़ों को उड़ाया तो उसमें से वो वहाँ तो आप बच गए लेकिन जो पहाड़ थे वो नरम हो गए, ज़मीन जो थी ना उसके उस एक्सप्लोजन के उनकी वजह से ज़मीन नरम हो गई तो वो उस वक्त तो ठीक रही, बाद में आप चल रहे हैं आला पे सड़ना अचानक ऊपर से स्लाइड आ गई तो जो बेचारे उस स्लाइड में आ गए शहीद हो गए।
तो सीटियाँ बजी तो वो जो सिविल लेबर थी वो जो काम कर रही थी उस वक्त वो बेचारे कंफ्यूज होके जब भागे हैं तो वो तीन अफराद ऐसे थे जो उन्होंने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ वो पत्थर लुढ़क रहे थे। वजह इसके कि वो साइड पे आ जाएं वो उधर ही भागना शुरू किया।
लास्ट जब आप करते हैं ना रॉक को तो फिर वो हिल जाती है उसका स्ट्रक्चर सारे का सारा, मैंने वो तो ऐसे हो जाता है ना फिर तो जब लास्ट करते हैं तो इट वॉज लाइक दिस, सारा डेब्रीज जो हैं और वो है कोई तो दरिया में गिर जाती थी तो बाकी ये बन जाती थी। अब इस जगह को आपने डेब्रीज से कटानी है सिर्फ जो ऊपर से ब्लास्ट हुई है, तो ये करते हुए जवान यहाँ पे वो लड़के तो बेलचा मारे थे तो ऊपर दो बंदे साइडों पर उनके इधर रस्सी डाल के ना तो वो उनको पकड़ा हुआ था कि कोई अगर कुछ ऐसा ना हो तो वो जो रस्सियाँ बंधी हुई थी ना वो उसे छूट गई क्योंकि जब उन्होंने देखा ऊपर से स्लाइड आ रही है और वो बेचारे दे वेंट डाउन दो टू चैप्स।
जब तो सड़क की अभी एक इंच भी नहीं बनी थी उस वक्त चार आदमी हमारे जो थे वो उसी वजह से शहीद हुए थे अल्टीट्यूड की वजह से।
देखें नेचर टेक्स इट्स कोर्स, उसको कभी आप बंद बांध के नहीं रख सकते, सैलाब आते हैं मोस्ट एडवांस कंट्रीज में भी सारा कुछ होते हैं, तो यहाँ भी नेचर बड़ी स्ट्रांग है, भुरभुरे पहाड़ हैं, कोराकोरम मीन्स काले भुरभुरे पहाड़ और उन्होंने गिरना है।
हाफ वे बिटवीन सुस्त एंड खुंजराब शेपर्ड्स अपनी बकरियों को लेके जाते थे तो उन्होंने किसी तरीके से या जो सुराख उनमें थे उनके अंदर लकड़ियाँ डाली हुई थी और उसके ऊपर फट्टे डाले हुए थे तो वहाँ पे जो है ना सबको खड़ा करके उनको डेमोंस्ट्रेशन दिलवाई गई कि तुमने यहाँ से जिसको गुजरना है ना तो तुमने पहाड़ की तरफ वर्टिकल जो है ना उसके ऊपर उसकी तरफ देखना है और मुड़ना नहीं है, अगर तुम मुड़े तो तुम्हारा जिस वक्त बिस्तर लगेगा पहाड़ को जो वर्टिकल फेस को तो वो तुम नीचे गिर जाओगे। 4 people died।
मेरी यूनिट में एक एक्सीडेंट में 22 बंदे मेरी आंखों के सामने 22 बंदे और माइंड यू वो जो पत्थर उनके ऊपर गिरा आकर उस पत्थर को हमने ब्लास्ट करके उड़ाया उनकी लाशें निकाली।
पैनामा कनाल जो बनी हूवर डैम बनी वो अमेरिका जो के दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था उसने बनाया, जो दुनिया का टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड कंट्री था उसने बनाया। हमारा यहाँ पे जो ये मार्वल है वो तो ये है कि हमारा ये सारा ह्यूमन एफर्ट इस पे लगा है, ह्यूमन एफर्ट। हमारे पास भाई वहां पे कंप्रेसर नहीं जा सकता, वहां पे बुलडोजर नहीं जा सकता, सड़क ही नहीं है ना भी कैसे जाएगा। इट इज द फैक्टर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर मैन पावर, क्वालिटी ऑफ द आर्मी मैन पावर, सीधी बात है। ये बंदे जो इतने शहीद हुए हैं ये ऐसे ही तो नहीं हो गए, किसी बंदे ने ये तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं नहीं करता, हो सकता है मैं मर जाऊं, किसी ने तो ये नहीं कहा।
आई फील कि KKH जो है इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानीज, दैट शोज व्हाट वी कैन अचीव इफ वी वांट टू, और कोई भी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है।
करकोरम हाईवे की सिग्निफिकेंस
خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے اور یہ خالی ہمارا ہی ایک وینچر نہیں ہے، یہ دو ملکوں کو جوائن کرتا ہے، چائنا اور پاکستان دونوں، اور اب اٹ کین ایکسپینڈ، اٹ کین جوائن دی ادر کنٹریز آلسو انٹرنیشنلی، اٹ کین بی یوزڈ۔
随着这条天然的屏障被超越、被征服，中巴两国之间的友谊便也达到了一个新的高度。过去40多年来，这条中巴唯一的陆路通道和贸易走廊，一直视为中巴两国友谊的象征。它不仅拉近了两国关系的时空距离，它也见证了中巴关系持续发展的每个时刻。
Reaching new heights. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway.
It's one of the highest paved roads on earth.
It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan.
جی جی ایف ڈبلیو، تو انہوں نے کہا کہ ہر گروپ کمانڈر کوئی آرٹیکل لکھے گا، تو 87 میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا، جو میں نے لکھا تو دیکھتے دیکھتے تو میں نے ایف ڈبلیو پہ لکھا، تو آئی کالڈ اٹ اے فیبولسلی ونڈرفل آرگنائزیشن۔
آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لائف کیسی تھی ان خطوں میں، اور کس طرح کے کے ایش نے ان کی پوری لائف کو بدل دیا، جس طرح چیزیں کھانے پینے کی وہاں جا رہی ہیں، گوشت جا رہا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
پہلے تو رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ تو یہ جو ایکسپیڈیشن جاتی تھی لوگ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے، اب وہاں پراپر ہوٹل ہیں، اور یہ سارا ان کا جو اکانومی بوسٹ ملا ہے ان کو، یہ کاراکرم ہائی وے کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کی ہینڈی کرافٹس کو آپ دیکھ لیں، ان کی شاپس فل ہیں اس سے، وہ اب اپنی چیزوں کو گلگت بلتستان کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹو سٹیز آف پاکستان۔
اب یہ تو ماشاءاللہ روڈ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ جانا چاہیں تو گاڑی آپ کو ملے گی۔
دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو کراکرم ہائی وے پہ آپ آج چلتے ہیں نا، میں اس کے چلنے کے بعد گیا ہوں، ایک یا دو دفعہ گیا ہوں کراکرم ہائی وے، آئی فیل ریئلی پراؤڈ کہ یار آئی واز اے پارٹ آف دس۔
تو ان کو ٹوریزم کی وجہ سے ویری بگ اکنامک بوسٹ ملا، تو وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئیں۔
گلگت بلتستان کے عوام کا دل جیتا ہے، یہ ایک عجوبہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام حکومت پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس ملک کا حصہ ہے۔
اگر ایف ڈبلیو او والے یہ روڈ نہ بناتے تو یہاں کے لوگوں کا ذہن لازمی لامحالہ طور پر دوسری طرف جاتا تھا، اب یہ روڈ بن گیا تو اپنے ملک کے ساتھ ابھی پاکستان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔
تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جیسے 7 wonders of the world ہیں، اس سڑک کا بنانا جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور اس قدر مشکل، وہاں پہ لیونگ واز سو ڈیفیکلٹ، سردی سے بچنا، کھانے کے آپ کے وقت نہیں ہے، ساری چیزوں کا، اس لحاظ سے تو یہ جو سڑک بن گئی ہے اٹ از اے میریکل۔